जगन्नाथ, जय बालदेवा, जय सुभद्रा। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नाशप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैशिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। आकर्ण्य भर्तुः गदितम् तम उचुः देवशत्रवः देवान् प्रति दैतेयाः अतिकोविदा नातिकोविदा। आकर्ण्य भर्तुर्गदितम् आकर्ण्यभर्तुर्गदितम् तमुचैर्देवशत्रवः तमुचैर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्ष देवान् प्रतिकृतामर्श दैतेयानादिकोविदा आकर्ण्यभर्तुर्गदितम् तामुचुर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकात् कृतामर्श दैत्येयानादिकोविदा।
आकर्ण्यगतुर्गदितम्
आकर्ण्यवत्सुर्गदितम् अमुचु देवसत्कृता देवशत्रवः नर्ष मुखेयामाति कोविदः गदितम् मुचु देवशत्रवः देवान् प्रति कृतामर्ष दैत्येनाति कोविदः आदन्यवत्सुर्गदितम् समुचु देवशत्रवः देवान् प्रति कृतामर्ष नाति कोविदः। शब्दार्थ इस प्रकार है, आकर्ण्य सुनकर वर्तुः अपने स्वामी के गदितम कथन को तम ऊचुः उससे कहा देवशत्रवः देवताओं के शत्रु सारे असुर देवान देवताओं के प्रति प्रति कृत अमर्षः ईर्ष्यालु दैत्येय असुरगण ना नहीं अधिकोविदाः अत्यंत कार्य कुशल अनुवाद अर्थात पर ज्वाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की वर्षों के दो भिन्न भिन्न प्रकार हैं, असुर तथा सुर। दो भूत सर्गे लोकेस्मिन् देवा असुर एव च विश्वभक्त स्मृता देवा असुरस्तदा विपर्यः। पद्म पुराण। भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त सुर या देवता हैं और भक्तों के विपक्षी लोग असुर हैं। भक्तगण सारे व्यवहारों में पटु होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्यकिंचना सर्वैर्गुणैस्तस्मात्सुरा। इसलिए वे कोविदा अर्थात पटु कहलाते हैं, किंतु असुरगण ऊपर से कामुक वृत्तियों में पटुता दिखलाते हैं, दिखलाते हुए भी पूरी तरह मूर्ख होते हैं। ना तो वे गंभीर होते हैं ना कोविदा। वे जो भी करते हैं वह अपूर्ण होता है। मोगाशा मोकर्मा, ये विवरण असुरों के विषय में भगवद्गीता में पाया जाता है, जिसके अनुसार वे जो भी करते हैं उसे उन्हें निराशा ही मिलता है। कंस की मंत्रणा देने वाले ऐसे ही व्यक्ति थे जो उनके प्रधान मित्र तथा मंत्री थे। ज्ञान विरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन्मैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी आप सबको मालूम है कंस का पछताव, देवकी और सुदेव के पास जाके पछताए। पछताने के बाद देवकी और सुदेव ने उनको माफ कर दिया और कंस बड़ा दुखी होके वापस अपने अनुचरों के साथ में बैठे। बैठ के उन्होंने अपने दुख भरी कहानी को बताया, देखो ऐसा ऐसा हुआ, योग माया मेरे हाथ से निकल गई। जैसे इन सब बातों को कहा, इन सब बातों को सुनकर इनके जो असुरी मित्र है इन्होंने इस प्रकार कहा करके इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। आकर्ण्य, आकर्ण्य शब्द जो इस श्लोक में पहला शब्द है, इसमें क्या है, शर्त क्या है? कंस के इन बातों को सुन के आकर्ण्य, किसका? भर्तुर गदितम कंस के कंस जो है उनके भर्तु है, उनके मालिक है, उनको भरण करने वाले राजा है कंस। तो उनके जितने भी अनुचर थे या उनके साथ में उनके ऊपर निर्भर करने वाले उनके मिनिस्टर्स थे, असुरों के जो मिनिस्टर होते हैं, असुरों के जो कंस का जो मंत्री हैं, उन सब लोगों ने कंस की बातों को सुन के तम उचुर देव शत्रवहा इस प्रकार कंस को बोलने लगे। वो कौन थे? वो लोग देव शत्रवहा, देवताओं से शत्रु, देवताओं के शत्रु थे। देवान प्रति ऋतामर्षा, देवताओं के प्रति शत्रुत्व होने की वजह से वो सब कौन थे? देवताओं के प्रति ईर्षा की भावना रखते थे। दैत्या न अति कोविदहा, ये सब दैत्य लोग कौन थे जिनके संग में बैठा था कौन? कंस। उनका वर्णन हुआ है न अति कोविदहा, न कोविदहा करते बुद्धिमान, वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। तो बुद्धिमान थे लेकिन ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। न कोविदहा मतलब बुद्धिमान नहीं थे, न अति कोविदहा का अर्थ क्या है? ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। ये स्पेशलिटी है शो का। चलिए अभी आप सबको मालूम है, मान लो कितना भी पछताए, कितना भी कुछ भी किया कंस, लेकिन उन्होंने आसक्त संघ को त्याग नहीं किया। देवकी और वसुदेव उनका चरण पकड़ लिया था और रोने लगा आंखों से। और देवकी और वसुदेव कौन है? साधारण नहीं है, भगवान के माता पिता है। उनका चरण पकड़ने का सौभाग्य कंस को मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? जैसे थे वैसे उनके मित्रों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ जाके बैठ गया। इसको गजस्नानम कहा जाता है, हाथी का स्नान। वो भक्तों का दर्शन करने मात्र से शुद्धिकरण होता है, पिछली बार हमने चर्चा किया किस प्रकार कंस वसुदेव के सामने आने मात्र से सप्तगुणी भाव से पछताव के भावना के डर के मारे आया, तो उनके अंदर सारे अच्छे गुण प्रकट हो गए थे, उनका हृदय शुद्ध हो गया था कंस का, लेकिन वापस कहाँ गया? जैसे थे अपनी बंतियों के साथ जैसे बैठा, कंस का मन प्रदूषित हो गया। इसलिए रूप गोस्वामी पर अपने उपदेशामृत में ये दोनों बातों को लिखते हैं, सतो वृत्ते हैं असत्संग त्याग, सतो वृत्ते हैं संतों के संग में बैठना और संतों के मार्गदर्शन में चलना, और दूसरा क्या है असत्संग त्याग, ये दोनों वर्णन किया गया है। असत्संग त्याग का अर्थ है सत्संग में बैठना, सत्संग में बैठने का अर्थ है असत्संग को त्याग करना। ये दोनों को क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके ऊपर जोर देने के लिए दोनों जब तक नहीं होगा तब तक ना सत्संग का फायदा नहीं होगा। इसलिए असत्संग को त्याग करने की बुद्धि होना चाहिए। असत में बुद्धिमता यही है, किसके साथ संग करना है किसके साथ संग नहीं करना है, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। और वो कंस के पास इस प्रकार की बुद्धि नहीं था। एक बार श्री प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य तमाम कृष्ण महाराज से प्रश्न पूछे थे कि व्हाट इट रिक्वायर्स टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, क्या चाहिए होगा। महाराज ने कहा कि प्रभुपाद इट इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का अर्थ क्या है? श्रद्धा से और गंभीरता से भक्ति को भक्ति में लगना, सिंसियरिटी। तो प्रभुपाद ने कहा नो। तो प्रभुपाद ने कहा सिंसियरिटी प्लस इंटेलिजेंस। गंभीरता के साथ साथ में क्या भी चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि क्या है? व्हाट इज दैट इंटेलिजेंस? तो ये बुद्धि है सत असत भेदम, सत और असत के बीच में भेद को पहचानने की जो क्षमता है उसको शास्त्रों में बुद्धि कहा गया है। वैसे देखा जाए अभी आजकल सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, कंप्यूटर चलाने बुद्धिमान हैं, रॉकेट चलाने, सब कुछ क्या क्या नहीं करते भी देखेंगे तो बच्चे बच्चे बुद्धिमान हैं, उनके हाथ में कोई भी मोबाइल दो उसका पूरा ऊपर नीचे सब जान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बुद्धि का लक्षण है, लेकिन ये बुद्धि जो है वो नहीं है जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु जी स्त्रियों को कम बुद्धि क्यों कहा गया है, क्योंकि बुद्धि का शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम। ऐसे देखा जाए रास्ते में जाएंगे आप, ये जो ट्यूटोरियल वाले बोर्ड लगाते हैं ना, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो सब लड़कियां ही होती हैं, लेकिन शास्त्र में क्या कहा गया है? उनको कम बुद्धि वाले कहा गया है। फिर ऐसा है तो उधर उनका फर्स्ट रैंक कैसे आया? तो ये बुद्धि, जब शास्त्र में बुद्धि शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये समझना चाहिए कि सत और असत के बीच में भेद को पहचानने की जो क्षमता है उसको बुद्धि कहा गया है। यानी एक वस्तु है, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग के विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता को आजकल बुद्धि माना गया है, लेकिन वेदों में उस विषय वस्तु से कितना दूर रहे उसकी क्षमता को बुद्धि माना गया है, ठीक उल्टा है विपरीत। एक्सपर्टाइज, इंटेलिजेंस का मेजरमेंट, ये लड़का बहुत बुद्धिमान है, इसका अर्थ क्या है? ये विषय भोग में कितना निपुण है उसके ऊपर आधारित होकर उसके वो मापदंड है बुद्धि का। लेकिन वैदिक साहित्य में विषय वस्तुओं से कितना दूर है या कितना बचने का क्षमता है उसको, वो बुद्धि का वास्तविक मापदंड है। तो अगर बताया जाए कंस के जितने भी अनुचर है, अब देखिए उनके पास ऐसी सूक्ष्म बुद्धि थी कि अपने जो भर्तु, अपने राजा की जो विचारधारा है उसको बदली करने की क्षमता उनके अंदर थी। अभी राजा वही होगा बुद्धिमान होगा, लेकिन उनके जो मंत्री हैं, कंस के मंत्री, वो कंस से भी ज्यादा बुद्धिमान थे, क्योंकि कंस के विचारों को बदली करने की जो क्षमता है उनके अंदर थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उनके मन में कोई विचारधारा है उनकी बुद्धि के अनुसार, कोई और बुद्धिमान व्यक्ति उनको कुछ बातें कह के वो उनकी विचारधारा को बदली कर सकता है, ये स्वभाव है कि नहीं? यानी एक व्यक्ति का बुद्धिमत्ता का क्षमता इसके ऊपर आधारित है कि हम दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम बदली कर सके। अब बताया जाए, यदि कुछ समय के बाद कुछ लोगों के बाद पता लगेगा कि कंस ने अपना जो पछताव करना या उन्होंने जो निर्णय लिया था देव के वसुदेव को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मानना, उनका शरण लेना, तो अभी ये जो विचारधारा कंस में थी उस कंस में विचारधारा को बदली कर दिया। किन्होंने बदली किया? उनके मंत्रियों ने बदली किया। तो इससे पता लगता है कि ये कंस के मंत्री कितने बुद्धिमान थे, दे आर रियली एक्सपर्ट। भले ही उनको बुद्धिमान वो भले बुद्धिमान थे लेकिन उनको क्या किस प्रकार संबोधित किया गया है, ना अति कोविदहा। लेकिन वो कोविदा थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन किस प्रकार के कोविदा थे वो किस प्रकार के बुद्धिमान थे, वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे, ना अति कोविदहा, वैसे बुद्धिहीन नहीं थे, देवर नॉट अबुद्धयः। वो कैसे बुद्धि के थे, वो कम बुद्धि वाले थे, अल्प बुद्धयः। भगवीता में भगवान भी अनेकों अनेकों इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं बोलते हैं कि दुर्बुद्धयः, कहीं बोलते हैं अल्प बुद्धयः, कभी क्या बोलते हैं मूढ़ा, ऐसे ऐसे अनेकों शब्द है। ऐसा नहीं कि कम बुद्धि वाला या बुद्धिहीन मूर्ख। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण भजन है उनका, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूढ़ मते शब्द अति महत्वपूर्ण है। अभी श्रीपाद शंकराचार्य किसको कहते हैं, हे बुद्धिमान मूर्ख। आप बोलोगे प्रभु जी ये क्या बुद्धिमान मूर्ख, मते का अर्थ है बुद्धिमान, मूर्ख का अर्थ क्या है मूर्ख, बुद्धिमान मूर्ख कैसे हो सकता है? तो ये बुद्धिमान मूर्ख ये है, एक बहुत बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, उनको पूरा इंजीनियरिंग का सब मालूम है, कंपनी में बहुत अच्छा नाम है उनका, अनेकों अनेकों लोगों से काम निकाल रहे हैं, बड़ा अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नया नया चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, लाखों और करोड़ों में कंपनी का फायदा हो रहा है, खुद का पगार भी 5 लाख महीने का है, सब है, इतना मेहनत करके घर में आता है लेकिन उनका अपनी पति और पत्नी और बच्चों को संभाल नहीं पाता है। फैक्ट्री में हजारों लोगों को संभालता है, घर में आने के बाद एक बच्चा बोलता है मुझे एक गाड़ी चाहिए, वो खरीद लेता है, उनको मालूम है जरूरत नहीं लेकिन फिर भी खरीद लेता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया था, एक भक्त है, आते रहते, कभी आते कभी जाते, तो ने कहा कि मैं बोलता इतना दुखी क्यों हूं, तो ने कहा क्या करूं प्रभु जी मेरा जीवन तो बहुत खराब है, मतलब तुमको अच्छा नौकरी है फर्स्ट क्लास है एकदम, क्या प्रॉब्लम है तुमको? उन्होंने कहा मैं क्या करूं कि मेरी बेटी है 2 सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती है, वो एक दिन स्कूल जाना मना, मतलब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बोला क्यों? मैं रोज उनको गाड़ी में स्कूल में छोड़ता हूँ, एक दिन मना कर दिया। तो मैंने बहुत रोने लगी, मैं बोला क्यों? तो ये गाड़ी में नहीं जाना है, उसका स्कूल कहाँ है, इधर है तो भक्ति तो हॉस्पिटल में उनको नजदीक, इतना नजदीक है, रोज गाड़ी में जाकर उनको छोड़ के आना पड़ता है, तो उनकी 2 सेकंड स्टैंडर्ड पड़ती है, तो ये गाड़ी में नहीं जाना है मुझे स्कूल। क्या चाहिए, क्या कौन, क्या है तुम्हारा? नहीं मुझे एक प्रकार का गाड़ी, कोई गाड़ी का नाम बताइए मुझे, इससे बहुत महंगी गाड़ी और चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि मेरे जो सहेली वो भी उसी गाड़ी में आती है। अब देखिए, मैंने बोला बच्ची है 2 लाफा मार के समझा के भेजता स्कूल, वही तो मैं नहीं कर सकता हूं, नया गाड़ी करेगा। इसको बोलते बुद्धिमान मूर्ख। तो सत असत भेदम, ये सत और असत के बीच में भेद को नहीं पहचान पाना, ये जो है इसको मूर्ख कहा गया है। तो ये जो अति कोविदहा, ये शब्द अति महत्वपूर्ण है इधर, ना अति कोविदहा, ये कंस के जितने भी अनुचर थे वो सब बहुत बुद्धिमान थे, अति कोविदहा, लेकिन ये ना शब्द के द्वारा ये सूचित किया जा रहा है, उनके पास भले ही कंस की मनोभावना को परिवर्तन करने की बुद्धि होने पर भी उसको वास्तविक बुद्धि नहीं कहा गया है, उनको कोविदहा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भागवत में कहा गया है तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमत्या उपर्यतः। ये श्लोक के अनुसार कोविदा शब्द ये इससे सूचित किया जाता है कि जो उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो ये तीनों भुवनों में उपलब्ध नहीं है उसको बुद्धिमान कहा गया है। वो क्या है? अमृतत्व, यानी वो जो सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है उसको ही कोविदा कहा जा सकता है। लेकिन असत वस्तुओं को प्राप्त करने का जो प्रयास में या वो प्राप्त करने में जो कुशल है उसको, वैसे भले ही उनके पास बुद्धि है लेकिन वो बुद्धिमान मूर्ख है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि दुश्मनों का संगति अच्छा है मूर्खों से, मूर्ख का संगति से अच्छा दुश्मन के साथ में बैठो चलेगा, बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है एक मूर्ख मित्र के साथ। क्योंकि तुम्हारा मूर्ख मित्र होता है वो ज्यादा डेंजरस है बुद्धिमान शत्रु से। कम से कम आपका शत्रु बुद्धिमान है उससे आप कुछ सीख सकते हो, लेकिन ये जो मूर्ख मित्र होता है इससे आपको हमेशा बचना चाहिए। भर्तृहरि उनके सुभाषितानियों में उन्होंने मूर्ख पद्धति का वर्णन किया है। मूर्ख पद्धति का वर्णन करते हुए कहा कि आप इस संसार में असंभव कार्य को संभव कर सकते हो, जैसे प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकर वक्रतम स्ट्रांतरात, आप ये जो क्रोकोडाइल होता है ना, हाँ उसके अंदर कोई मणि है उनके मुंह में, आप जाकर उस मणि को लेके आ सकते हो। हाथी मधुमत हाथी को वश में ला सकते हो। मूर्ख चित्त मारा रहे थे, मूर्ख का जो बुद्धि है या उसकी चित्त है उसको आप कभी भी बदली नहीं कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू कैनॉट डू दैट। इसलिए मूर्खों से बच के रहना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्खों से अगर कोई संगति करता है उनका संपत्ति, उनका आयु, उनका यश, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कंस के सब कुछ नष्ट क्यों हुआ? केवल एक ही वजह से हुआ, क्योंकि अपना दिल की बात जो है मूर्ख को कहा, अपने दिल की बात जो है एक मूर्ख को कहा। कभी भी कितना भी दुख आए अपना जो दिल की बात है जो मूर्खों को कभी नहीं कहना चाहिए, खास करके जो आध्यात्मिक में उन्नत नहीं है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होता है, उनके पास जाके अपने दिल की बात व्यक्त करोगे तो सलाह देंगे इतना प्रेम से अच्छी तरह सलाह देंगे आपको लगता है यही सही है। ये वेरी वेरी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि खास करके परिवार में अनेकों अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अगर आपको कुछ समस्या है संकट है उसको दूर करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? संतों के पास जाना चाहिए। अगर अपने परिवार वालों के बीच में बैठ के अगर बताओगे तो क्या होगा? वो आपको एकदम बड़े अच्छा सलाह देंगे, तो वो सलाह जो है क्या होगा, वो केवल आपकी दुर्गति का कारण बनेगा, जैसे कंस का है। इसलिए उसी मूर्ख पद्धति में कहा गया है आगे के श्लोकों में, बतौर कहते हैं कि प्रीति साजने नये नृपति ने कांताजने दृढ़ता, जो इस प्रकार अपने अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनके प्रति केवल दाक्षिण्यम स्वजने, दाक्षिण्यता दिखाना चाहिए। अगर वो अपनी इनको समझे मेरा मित्र है, इनके पास जाके अपना जो दिल की बात है उसको बताओ, ऐसा सोचेंगे उसके द्वारा क्या होगा कि ये प्रपंच में ये लोक में वैसे लोगों के वजह से खुद को भी दुख होगा और सारे जगत को भी दुख होगा। कंस का इस प्रकार आगे के श्लोक में जैसा वर्णन है कि पूरा अत्याचार क्यों करना शुरू किया, केवल एक ही कारण शुरू किया, क्योंकि आप उन्होंने उनका बात तो सुनने की बात की पहले ही बात है, उन्होंने अपनी जो दिल की बात है वो असत लोगों से उन्होंने कहा। दैट इज वाई यू शुड नेवर गुह्यमाख्याद पृच्छति, जो है वो संतों के प्रसंग में होना चाहिए, वो पब्लिक में नहीं होना चाहिए, या आपको जो अच्छा लगता है उनके पास जाके अपनी दिल की बात नहीं बोलना चाहिए। कि जब आप दिल की बात कहते हो भले ही आप कंस जैसे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दूसरा व्यक्ति का जो सलाह है उसको आपको बहुत अच्छा लगता है, यू लाइक इट वेरी मच, बी वेरी केयरफुल। हमारे अंदर स्वभाव है बद्ध अवस्था में भावनाओं को, भावना से युक्त रहता है कि भौतिक भावना रहती है, बहुत सारे दुख का अनुभव होता है, लेकिन जब उसको कहाँ किस प्रकार किसके कौन से समय में किस व्यक्ति के पास जाके व्यक्त करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाए, किसी को भी जाके कहीं भी जाके बोले लग जाएंगे तो क्या होगा, वो आपका दुर्गति का कारण बनेगा, इट विल बी कॉज ऑफ योर डाउनफॉल। और ज्यादा इसके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है, आप सब इसके ऊपर बुद्धिमान हो, जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिन में कुछ कलमश आया, कुछ तो तकलीफ है, आप उसकी वजह से शांत हो, उस समय क्या करना चाहिए, वो एक साधु के पास जाके विचार करके परामर्श करना चाहिए। अगर आप अन्य कोई व्यक्ति के पास जाएंगे जो खुद ना अति बुद्ध यहा, ऐसा होगा तो क्या होगा, आपको ऐसा लगता है कि इसका जो विचार है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो कंस का यही गलती था। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दो प्रकार के लोगों के विषय में कहते हैं, क्योंकि असुरी जो लोग हैं वो देवताओं के शत्रु हैं, और दूसरा क्या है, देवताओं से ईर्ष्या करते हैं। देखिए, शत्रुत्व होता है, शत्रुत्व पहले जमाने में या कुछ दो राजा होते थे जब युद्ध करते थे, ये भले उनको एक दूसरे को शत्रु करते कहा जाता था, लेकिन ये शत्रुत्व था ईर्ष्या रहित शत्रुत्व। इसको समझना बड़ी मुश्किल बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, ईर्ष्या नहीं है लेकिन फिर भी शत्रु है, ऐसा कैसे है। ये हाई क्लास लोग हुआ करते थे। मान लीजिए कभी दो देवता लोग या दो राजा लोग युद्ध करते थे, सुबह के समय में दिन के समय में पूरा युद्ध करेंगे और शाम को मित्र जैसे बात करेंगे। महाभारत में ऐसे वर्णन है, जब पांडव और कौरव युद्ध करते थे, उनकी जो सेना जो है दिन भर युद्ध करेंगे, एक दूसरे को मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन शाम के समय वो सब एक ही प्लेट में बैठ खाते थे, साथ में खेलते थे। तो ये बहुत ऊंचा स्तर की चेतना है, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो मित्र के साथ भी ईर्ष्या रहता है, पहले के जमाने में दुश्मनों के साथ भी ईर्ष्या नहीं रहता था। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद है, लेकिन मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं होता था। अभी क्या होता है, दो लोगों का मतभेद नहीं होने पर भी मनभेद होता है। कुछ जब भक्तों के बीच में, मैं वही कहता हूँ कि भक्तों, दो भक्तों में बहुत युद्ध करते, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से देश करके आते हैं, तो दूसरे से बात करो, दोनों एक ही बात को कहने वाले हैं। दोनों का विचार एक ही रहता है, विचार एक होने पर भी दूसरे से, एक दूसरे से झगड़ा करते, युद्ध करते और ईर्ष्या करते। पहले जमाने में लोग, दो लोगों के बीच मतभेद होने पर भी उनका मनभेद नहीं होता था, दोनों शांति से बैठ के आराम से चलते थे। आश्चर्य की बात है, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार मैं एक दक्षिण उडुपी में गया था, तो उधर वैष्णव सन्यासी हैं, तो उस समय उधर एक मायावादी सन्यासी आए, आते उनको अच्छा स्वागत किया, सब कुछ किया, एकदम बिल्कुल उनको अच्छा ट्रीटमेंट किया, तो उनको सब ये किया, उनको हाथ पहनाया, जो भी स्वागत करना सब कुछ किया, एकदम मित्र के रूप में गले लगाया, सब कुछ किया। लेकिन बाद में मैंने वो सन्यासी से पूछा, वो सब कार्यक्रम होने के, वैष्णव सन्यासी से पूछा कि अरे हम तो वैष्णव है ना, वो तो माईवादी है, माईवादी सन्यासी है, हम तो उनके कट्टर विरोधी है, खास करके आप मध्वाचार्य के अनुगामी है, आपने तो सब। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया, हमारा समस्या उनका सिद्धांत के साथ, उनके साथ नहीं है। हमारा समस्या जो है उनके सिद्धांत के साथ है, उनके साथ नहीं, उनके साथ तो प्रेम है, ठीक है नहीं। अभी तब मैं विचार करने लगा, हम सब भक्त हैं साथ में, सिद्धांत तो एक ही है, विचार भी एक ही है, लेकिन फिर भी तो ये असुर है। असुर मतलब जिनके हृदय में ईर्ष्या, देर एनवियस, जो ये जो ईर्ष्या ऐसी वस्तु है कि भले ही दोनों एक ही उनका उद्देश्य है, एक ही एक दूसरे के हित करने की सोचते हैं, उसमें भी ईर्ष्या की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये असुर है। असुर में कंस अच्छा बन रहा था बेचारा, लेकिन ये जो असुर लोग थे वो इस प्रकार सोचने लगे, अगर कंस अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, अभी देवता लोग हमारे ऊपर अटैक करने आएंगे तो कंस हमारे साथ तो जुड़ेगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, अभी क्या करना होगा, उनका बुद्धि भ्रष्ट करना होगा, कंस की बुद्धि भी भ्रष्ट करना होगा। अभी देखिए नारद, नारद जी भी नारद जी आके भी कंस का बुद्धि भ्रष्ट किए थे, ठीक है ना, आपको पहले मालूम है कंस जो है उनके अंदर अच्छा ही आ गए थे, चलो क्या ही बच्चों क्या मरना हुआ बच्चा है ना, चलो आप लेके जाओ, देवी की ओर से बोला पहला बच्चा को लेके जाओ, तो आपको मालूम है कंस आके उनको नारद जी आके कंस का बुद्धि भ्रष्ट किया। अभी नारद ने भी कंस का बुद्धि भ्रष्ट किया और ये जो कंस के जो मंत्री हैं वो भी कंस का बुद्धि भ्रष्ट किया, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है देखिए। अगर मान लो कि एक भक्त आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है कुछ बोल को, उसमें भी आपका भलाई है, लेकिन एक अभक्त आपकी भलाई भी चाहता है तो उसमें भी हमारा अंदर हमारा दुर्गति है। नारद जी ने सोचा कि ये कंस का नाश कैसे हो, इसके वजह से वो क्या किया, उन्होंने कंस का बुद्धि भ्रष्ट किया। अभी ये जो जितने भी अनुचर है वो लोगों ने भी कंस का बुद्धि भ्रष्ट किया, किसके लिए, कंस का अच्छा हो, भलाई हो, है कि नहीं। तो ये भक्त अगर किसी का भलाई नहीं सोचता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका दुर्गति सोचता है, उसमें भी है उस हमारी भलाई है, लेकिन जब ये असुर लोग हमारी भलाई सोचते हैं ये सबसे बड़ा डेंजर है। द मोस्ट डेंजरस थिंग इज वेन ये जो अभक्त होता है जब वो हमारे ऊपर भलाई करना चाहता है, ये इससे बचो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये प्रसंग के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो भक्त होते हैं, असुर होते हैं, जब असुर आपकी भलाई करना चाहते हैं, ये इसके अंदर हमारी दुर्गति है। तो असुरों की भलाई से ही बचो, बी बिवेयर, बिवेयर ऑफ डेमन्स हु वांट बेनिफिट यू। श्रील भक्तिवत्सल ठाकुर इसको पूतना कहते हैं। तो अस्तित्व में जितने भी जैसे बच्चा का जन्म होता है, होते हैं सब लोग बच्चे से प्रेम करते हैं, उनका भलाई चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सब लोगों का ये जो विचार है ये केवल उस बच्चे का केवल दुर्गति की ओर लेके जाने वाला है। दे बिवेयर ऑफ एनवियस पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ योर बेनिफिट, क्योंकि उनको मालूम नहीं भलाई क्या है। तो आगे इस श्लोक की तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। भगवताए भगवान ने कहा कि दो प्रकार के लोग थे, दैवासुर एवच दैवासुर संपद विभाग योग। तो 16वें अध्याय में भगवान ने दैव असुरी ये उनके गुणों के बारे में वर्णन किया। ये क्यों वर्णन करना पड़ा भगवान को, 16वें अध्याय क्यों वर्णन करना पड़ा, क्योंकि सारे जगत में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार देवता है, एक है असुर। और देवता कौन होते हैं, असुर कौन होते हैं, देवता वो हैं जो भगवान के भक्त हैं, और असुर वो हैं जो भगवान के भक्ति नहीं करते हैं। इससे द्वाभूत स्वर्गो लोकेस्मिन दैवासुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देवा, ये जानो विष्णु भक्त स्मृतो देवा। और दूसरा कौन है, जो असुराः तद्विपर्ययः उनके जो विपरीत होते हैं वो। तो ये क्यों वर्णन करना पड़ा भगवान को 16वें अध्याय में, 15वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया किनका, पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया, और उन्होंने कहा यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वैतिमाम सर्वभावेन भारत। न स्वाभाविक तरीके से प्रश्न उत्पन्न होता है, जो लोग आपको पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार नहीं करते वो कैसे हैं, वो कौन है, उनमें इनमें अंतर क्या है, भेद होना चाहिए, अंतर को बताना होगा। इसलिए भगवान ने 16वां अध्याय में वर्णन किया कि असुरों का और देवियों का, इन दोनों का, देवताओं का, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है आप सुनो। तो गुणों का पूरा वर्णन करना 16 अध्याय शुरू करते हैं। और इसी प्रसंग में 9वें अध्याय में भगवान ने ये जो जितने भी कार्य होते हैं, खास करके असुरों का कार्य होते हैं, उनके विषय में कहते हैं कि मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीशिता। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 9वें अध्याय में, जिसमें भगवान कहते हैं कि मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। विचेतसः का अर्थ क्या है? जो अंदर विचार है, बुद्धिमान है। लेकिन किस प्रकार के बुद्धिमान है? ये असुरी प्रकार की, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीशिता, वो बुद्धि जो भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहित हो चुका है। तो वैसे दो प्रकार के लोग हैं, एक है राक्षसी है, दूसरा असुरी। तो इन लोगों का जितने भी मोघ आशा, उनकी आशा, आशा का अर्थ है कि ये कार्य करूंगा तो ये मिलेगा, ये मोघ है। मोह का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोह? वो पूरा गलतियों से युक्त, जिसको मोह कहा जाता है, यानी जिस उद्देश्य से वो कार्य करते हैं, वो उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकती, यानी इट इज यूजलेस। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं कुछ उद्देश्य से, और ये कार्य करने के द्वारा वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, तो वो कार्य करना कोई मतलब ही नहीं है, कि नहीं? मोह आशा मोह कर्माण, उनका कार्य करने की जो प्लान है, व्यवस्था, वो सब भी मोघ, यानी वो भी सफल नहीं होता है। और मोहाशा मोह कर्माण मोघ ज्ञाना, तो इनका ज्ञान भी मोघ है। तो ये तीनों में बहुत गहरा संबंध है। देखिए, ज्ञान जब है तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। जब हम कार्य करते हैं, किसके लिए करते हैं? कुछ आशा को लेकर करते हैं, है कि नहीं? तो ये तीनों संबंध में हो सकता है उनका ज्ञान सही हो, नहीं, ज्ञान भी गलत है, और दूसरा उनका कार्य सही हो, ज्ञान कार्य भी गलत है, जिस उद्देश्य से सब करते हैं वो भी गलत है। एवरीथिंग इज टूटियों से भरा हुआ, गलतियों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रकृति मोहिनीशिता, इनका जो प्रकृति के द्वारा इनका बुद्धि मोहित हो चुका है। तो इनको दो कैटेगरी किया गया, राक्षसीम आसुरीम। तो ये राक्षसी कौन है, असुरी कौन है, इसके विषय में थोड़ा जानना जरूरी है। राक्षसी वो है, और रावण को हमने राक्षस कहा है, कि नहीं? रावण जो है वो कौन है? राक्षसी। और असुर, असुर वो है जो भगवान नहीं करके मानता है, उसको असुर कहा जाता है। और दूसरा है, भगवान को भी साधारण मनुष्य मानता है, वो राक्षस है। तो थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। जैसे आप ये जो नास्तिक सिद्धांत है और असुरी सिद्धांत है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये सब जो पहले के तीन है वो सब कट्टर नास्तिक है, असुरी सिद्धांत है। जैसे पतंजलि हुआ और जैमिनी हुआ और मायावादी हुए, ये सब भगवान को मानते हैं, लेकिन सही भगवान को नहीं मानते, भगवत तत्व को नहीं मालूम। इसलिए ये जो षड दर्शन में पहले के जो तीन दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य, ये नास्तिकस, और बाकी जो तीन हैं वो कौन है? दे आर राक्षसी। राक्षसी मासुरीम चाहिए प्रकृति में, प्रकृति के द्वारा मोहित होने की वजह से इनके जितने भी फिलॉसफी है, जैसे अभी आगे असुरों को फिलॉसफी सुनिए, कंस को समझाएंगे, अभी असुर के जितने जो मंत्री हैं वो कंस को समझाएंगे, उनका लॉजिक सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या कितना अच्छा लॉजिक है आगे के श्लोकों में, और कंस का मनोभावना को बदली कर दिया। तो ये जो राक्षसी मासुरीम सेवा, उनके प्रत्येक कार्य मोघ है। अभी भौतिक जगत में हम देखते हैं कितना स्कूल कॉलेज खुल रहा है, किस उद्देश्य से स्कूल कॉलेज खुल रहा है बताइए? कितना ज्ञान दिया जा रहा है, क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? ताकि वो अच्छा काम करे तो सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन जितना स्कूल कॉलेज खुल रहा है, जितना भौतिक ज्ञान में, तथाकथित भौतिक ज्ञान में अग्रसर हो रहे हैं, वो उनके कार्य विफल हो रहे हैं। वो कार्य जितना विफल होता है उतना दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल। जैसे पहले जमाने में घोड़ा गाड़ी था, किसी ने सोचा नहीं, घोड़ा गाड़ी जो है वो रास्ते में घोड़ा जो है मल त्याग करके गंदा करता है। अभी घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए। तो बहुत अन्वेषण किया, मोटर गाड़ी लेके आए। मोटर गाड़ी लेके आया तो उन्होंने सोचा कि अभी बस रास्ता साफ है, लेकिन क्या हो गया, हवा प्रदूषण हो गया, है कि नहीं। ये सब मोघ आशा मोघ कर्माणो है, इट इज ऑल टोटल नॉनसेंस एंड टोटल यूजलेस। लेकिन दिखता कैसा है, वाह कितना अद्भुत है। और खंस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी भ्रमित करने वाला है, इसे बहुत सावधान होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज असत्संग त्याग ये वैष्णवाचार। असत्संग त्याग, वैष्णव मतलब असत्संगति से बचता है। असत्संग मतलब ये जानना चाहिए, खास करके व्यक्ति को संग चाहिए। कब कब संग चाहिए होता है मालूम है, जब दुखी होता है ना संग चाहिए होता है, हाँ उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। इससे चाणक्य पंडित कहते हैं कि आपको कभी भी जब अकेले हो, जब बीमार हो, जब दुखी हो, उस समय कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। नेवर एवर टेक एनी डिसीजन। या बीमार हो तो मान लो कि आप बड़ा प्रचार का कार्य कर रहे हो, किस कारण बीमार पड़ जाते हो, तो टाइम लगता है कि क्या फायदा मेरा जीवन का, सब शरीर खत्म हो गया, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं अभी निर्णय लेता हूँ सब बंद कर दूंगा, ऐसा विचार आता है। जब दुखी है तभी भी विचार आता है, जब अकेले है ऐसे क्या लगता है कि भजन करना है, सब क्या है। तो कभी भी कोई भी निर्णय लोगे, जब ये तीन अवस्था में कभी नहीं लेना चाहिए। जब निर्णय लेना होगा तब लेना चाहिए, अति बुद्धिमान व्यक्ति होता है उनके पास बैठ के लेना चाहिए। तो एक कंस ने निर्णय लिया, चलो अभी मैं दुखी था, दुखी अवस्था में था कंस अभी, तो उस समय वसुदेव और देवकी से एडवाइस मांगता, मैं क्या करूं। अभी उनको एडवाइस मांगने के लिए यही मिले, तो बी वेरी केयरफुल किससे आप अपना दिल व्यक्त कर रहे हो, वो आपको जानना चाहिए। किससे नहीं करना चाहिए आप कंस से सीख लीजिएगा। हरे कृष्णा। एक और सीरियस
Translation says,
Good that you are talking about your problems here. Hare Krishna. Chandra Ashram Bhagatam ki Srila Prabhupada ki jai.